पृष्ठ संख्या 61, ब्रैकेट में 2, ब्रैकेट क्लोज। लहरों के राजहंस, ब्रैकेट में प्रथम संस्करण 1963, नया संस्करण 1968, ब्रैकेट क्लोज। लहरों के राजहंस राकेश का अगला नाटक है और इसे आषाढ़ का एक दिन के विकास क्रम में देखा जा सकता है। यद्यपि इस नाटक में परिवेश को उतना नहीं लिया गया है जितना आधुनिक मानव मन की जटिलता और अंतर्द्वंद को। संदर्भ 1, अनिल सारी, प्रतिपक्ष, कॉमा 14 जनवरी, कॉमा 73, कॉमा पृष्ठ संख्या 14। 2, परिवेश, अनुभूति से अभिव्यक्ति तक, पृष्ठ संख्या 182। पृष्ठ संख्या 62, उतनी विविधता भी नहीं है, न पात्रों के स्तर पर और न भाव और स्थितियों के स्तर पर। नाटकीय गठन में उस जैसी सघनता भी नहीं है, लेकिन फिर भी यह नाटक राकेश के संवेदनशील नाटककार व्यक्तित्व को, उनकी नाट्य भाषा की शक्ति को और रंगमंच के समूचे वातावरण और शिल्प को अभिव्यक्त और स्थापित करता है। दोनों नाटकों में जो बातें समान लगती हैं वह हैं ऐतिहासिक कथानक, आधुनिक संदर्भ, भाषा में नाटकीय काव्य और एक पूरा रोमांटिक वातावरण। राकेश के व्यक्तिगत स्वभाव की परतें, उलझने इस नाटक में भी जैसे खुलती जाती हैं, उनके किसी भी नाटक में समसामयिक परिस्थितियों, समस्याओं का यथार्थ चित्रण मुख्य नहीं है, बल्कि उनके बीच उलझते, टूटते, बिखरते आज के मनुष्य की पीड़ा और मानसिक द्वंद्व ही मुख्य है, जो शायद राकेश के स्वभाव और मन के ज्यादा निकट है। जैसा कि कहा गया है कि इस नाटक का आधार भी ऐतिहासिक है, लेकिन रूढ़िगत अर्थ में नहीं, उसी अर्थ में जिस अर्थ में आषाढ़ का एक दिन का है। ऐतिहासिक और सुदूर अतीत के कथानक को राकेश ने अपनी सार्थक कल्पना और गहरी अनुभूति से उठाया है। नाटक की कथा अश्व घोष के, ब्रैकेट में सौंदर्य नंद, ब्रैकेट क्लोज, काव्य पर आधारित है। यह मूल काव्य भी अपने में पूरा ऐतिहासिक नहीं है, कल्पना का आश्रय विश्व घोष ने भी लिया है। संस्कृत और पाली साहित्य में उपलब्ध कथा का अश्व घोष ने विस्तार दिया है। राकेश ने भी ऐतिहासिक तथ्यों पर मूलतः ध्यान न देकर काल्पनिक अनुवृत्ति से उसे विस्तार दिया है। कथानक मूलतः नंद और सुंदरी पर केंद्रित है। नंद और सुंदरी ऐतिहासिक पात्र होते हुए भी आज के संदर्भ में नितांत आधुनिक हैं, क्योंकि उनके द्वारा आज के मानव की बेचैनी, विवशता और आंतरिक संघर्ष प्रेषित किया गया है। स्वयं राकेश कहते हैं कि नंद और सुंदरी की कथा एक आश्रय मात्र है, क्योंकि मुझे लगा कि इसे समय में परिक्षेपित किया जा सकता है। नाटक का मूल अंतर्द्वंद उस अर्थ में यहाँ भी आधुनिक है जिस अर्थ में आषाढ़ का एक दिन के अंतर्गत है। लेकिन इस नाटक की बड़ी लंबी रचना प्रक्रिया है जो इस सत्य से साक्षात्कार कराती है कि लेखन के समय एक रचनाकार की मानसिक स्थिति कितने कितने अनुभवों में से रास्ता तय करती है, कि एक रचना कितनी जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है और लेखक को किस तरह अपनी रचना से पूरा संतोष नहीं मिलता। बहुत समय पहले से मन में उमड़ते घुमड़ते इसके कथानक और एक बिंब के संबंध में राकेश ने स्वयं कहा है, बहुत पहले से एक बिंब मन में था, दो दीपाधार, एक ऊंचा शिखर, उस पर पुरुष मूर्ति, बाहें फैली हुई तथा आंखें आकाश की ओर उठी हुई, दूसरे छोटा शिखर पर नारी मूर्ति, बाहें सिमटी हुई तथा आंखें धरती की ओर झुकी हुई। पहले पहल सौंदर्य नंद काव्य को पढ़ते हुए यह बिंब उनके हृदय में बनने लगा था। इसे कहानी के रूप में 1946 से 47 में लिखा था। इस कहानी में नाटक के चार पात्र नंद, सुंदरी, अलका और मैत्रेय थे। संदर्भ: एक, लहरों के राजहंस। भूमिका: पृष्ठ संख्या 10। पृष्ठ संख्या 63। नाटक में सुंदरी कहती है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह कथन भी उस कहानी में था, लेकिन राकेश को यह कहानी इतनी अधूरी लगती रही कि प्रकाशित नहीं हुई। बाद में इसी कहानी को सुंदरी नाम से रेडियो नाटक के रूप में लिख डाला। रेडियो पर यह नाटक प्रस्तुत भी हुआ, लेकिन राकेश का साहित्यकार मन संतुष्ट नहीं था। रचना पड़ी रही, मन में घुमड़ती रही। 7-8 वर्षों के बाद जालंधर रेडियो के लिए इसी को रात बीतने तक शीर्षक से राकेश ने पुनः लिखा, लेकिन उस समय भी उन्हें लगता रहा कि जैसे चरित्रों में संतुलन नहीं है और संवादों की गठन बनावट अधूरी है। अंत में 1963 में लहरों के राजहंस नाटक के नाम से यह सर्वथा नए रूप में प्रकाशित हुआ। किस तरह तनावपूर्ण स्थिति में 11 दिनों के अंदर ही यह नाटक पूरा हुआ। राकेश ने भूमिका में उसका बड़े विस्तार से उल्लेख किया है। लगता है नाट्य विधा की मौलिकता, उसकी शक्ति, नाट्य भाषा की जीवंतता और सृजनात्मकता के प्रति वह इतने सतर्क थे और नाटक उनके लिए हमेशा एक चुनौती लेकर आता था। साथ ही अन्य लेखकों के नियमबद्ध व्यवस्थित लेखन की तुलना में राकेश के लिए लेखन अनिवार्य होते हुए भी उतना सहज नहीं था। मैं क्या लिखना चाहता हूँ, यह कभी मन में स्पष्ट नहीं होता। जो कुछ लिखा जाता है, वह सब अधूरा या अतिरिक्त लगता है। एक असंतोष, एक आंतरिक बेचैनी कि मन को अचानक गहरे छूने वाली अनुभूति ज्यों की त्यों क्यों नहीं शब्दों में आ पा रही है। उधर से आती हवा से खंभे की रोशनी बार बार कांप जाती है, मेरा जिस्म भी कांप जाता है। क्या इस कपकपी को मैं किसी तरह कागज पर उतार सकता हूँ? इस तरह की जो इसे पढ़े उसे भी इतनी ठंड महसूस हो। लहरों के राजहंस राकेश की इसी बेचैनी और नाट्य लेखन के प्रति उनके उत्तरदायित्व का उदाहरण है। नाटक से अब भी लेखक मन पूरा संतुष्ट नहीं था। उस पर प्रतिक्रियाएं भी खूब हुई, क्योंकि रूपबंध की दृष्टि से इसका तीसरा अंक शिथिल और उलझा हुआ है। नाटकीय तीव्रता और सघनता में उससे बाधा पहुंचती है। साथ ही नाटक की बोझिल प्रतीकात्मकता को लेकर भी काफी मतभेद उठ खड़ा हुआ। आखिरकार तृतीय अंक को फिर से लिखा, नाटक को फिर से संशोधित किया और तब अपने रूप में यह 1968 में प्रकाशित हुआ। नाट्य शिल्प की कुछ कमजोरियां अवश्य दूर हुई, लेकिन नाटक में फिर भी उतना सघन प्रभाव पैदा नहीं हो सका। संभवतः कोई भी रचना ऐसी नहीं होती कि उसके रूप को अंतिम और निश्चित माना जा सके। ऐतिहासिक पात्रों को अनैतिहासिक और युगीन बना देना और उनका बड़ी एकाग्रता और गहराई ने चित्रांकन करना, अगर इस नाटक की विशेषता है, तो ऐतिहासिक अंतर्द्वंद को बिल्कुल आधुनिक अर्थव्यंजना प्रदान करना भी। ऐतिहासिक नाटकों में पात्रों की एकदम नई सृजनाएं और उनका बड़ा तीव्र चित्रांकन इतनी सफलता से हिंदी नाटक में पहली बार हुआ, क्योंकि यहाँ वही प्रमुख हैं, कथा की प्रामाणिकता और वर्तमान समस्याएं नहीं। पृष्ठ संख्या 64। पहले के ऐतिहासिक नाटक नाट्य विधा को आंतरिकता में नहीं ले जाते, वे एक पाठ्य पुस्तक की मांग पूरी करते हैं। दर्शकों और रंगमंच से इतना तादात्म्य उनका नहीं हो पाता। स्कंद गुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अंधा युग और आषाढ़ का एक दिन के बाद, यह एक श्रेष्ठ नाट्य कृति है। भाव और स्थिति के स्तर पर ज्यादा, रूप बंध के स्तर पर कम। 3 अंकीय नाटक में कपिल वस्तु के राजकुमार नंद के बौद्ध भिक्षुक बनने और उसकी पत्नी सुंदरी के रूप गर्व और यौवन आकर्षण के दर्प की कथा है। इस सामान्य कथानक में द्वंद्व का 2 स्तरों पर संचरण होता है। नंद और सुंदरी उसके केंद्र हैं। सुंदरी एक अनंत सौंदर्य संपन्न, आत्माभिमान से भरी, अनन्य विश्वास से युक्त नारी है। चाहती है कि नंद को पुरुष को अपने सौंदर्य आकर्षण से, प्रणय के बंधन से बांधे रखे। दूसरे की असफलता से अपनी सफलता का संकेत करते हुए वह कहती है, देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांध सकता, तो क्या आज भी वे राजकुमार सिद्धार्थ ही न होते? नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह उसके व्यक्तित्व की दृढ़ता, आत्मविश्वास और गर्व है कि नंद उसके रूपपाश में बंध ही जाएगा और फिर मुक्त होकर सन्यासी नहीं बनेगा। कामोत्सव का आयोजन उसके व्यक्तित्व को, उसकी कामना, विश्वास और दर्प को व्यक्त करता है। स्वाभिमान उसके हाव भाव गतियों में ही नहीं, उसके कथनों में भी है। वह सोच ही नहीं पाती कि भरा पूरा यौवन और हृदय में धूल भरा आकाश, इसमें मेल ही क्या है। वह यह भी नहीं समझ पाती कि कामनाओं को जीता कैसे जा सकता है और यह कामना किसी के मन में जागती ही क्यों है। राजहंसों के जोड़ों की किलोल के आगे उसे गौतम बुद्ध का निर्वाण और अमरत्व सारहीन निरर्थक लगता है, लेकिन उसका विश्वास कुछ टूटता है यह जानकर कि बहुत से अतिथि कामोत्सव में नहीं आएंगे। स्वाभिमान भी उभरता है, आपका स्वयं लोगों के यहाँ जाना विशेष रूप से, यह कहने के लिए यह क्या अपमान का विषय नहीं है? मेरे उत्सव में लोग अनुरोध करने से आए, इससे उनका न आना ही अच्छा है। यह जानते हुए भी कि देवी यशोधरा भिक्षुणी के शिविर में जाने वाली है और आज सबसे मिलेंगी, वह कामोत्सव के आयोजन को टालना नहीं चाहती। यह उसके व्यक्तित्व का प्रश्न है। मैत्रेय से वह कहती भी है, कामोत्सव कामना का उत्सव है। आर्य मैत्रेय, मैं अपनी आज की कामना कल के लिए टाल रखूं क्यों? मेरी कामना मेरे अंतर की है, अंतर में ही उसकी पूर्ति भी हो सकती है। बाहर का आयोजन उसके लिए उतना महत्व नहीं रखता जितना कुछ लोग समझ रहे हैं। विश्वास और गर्व के पीछे अंतर की पीड़ा और द्वंद्व है जो प्रकट नहीं होना चाहता, लेकिन अंतर में निरंतर बढ़ता जाता है। मैं अव्यवस्थित नहीं हूँ, किसी का कोई षड्यंत्र मुझे अव्यवस्थित नहीं कर सकता। डॉट 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 अपने उद्वेग का वास्तविक कारण मैं स्वयं हूँ और किसी को यह अधिकार मैं नहीं देती कि वह मेरे उद्वेग का कारण बन सके।